नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ हरे कृष्णा। तो कल हमने कथा को विराम दिया था, जहां पर रामचंद्र जी ताटका का वध करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं किसी साधक के जीवन में, और विश्वामित्र मुनि जो एक उपासक की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने सब कुछ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में शरणागत किया और उनकी शरणागति प्राप्त करने के पश्चात प्रभु श्री राम ने ताटका का वध किया। और आगे जब अविद्या अब नाश हो चुकी है तो और दो असुर बाकी थे जो कि विश्वामित्र मुनि चाहते थे उनका भी संहार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण करें, और वो थे मारीच और सुबाहु। मारीच पुत्र था ताटका का और सुबाहु वो उनके गुट में था, उनकी ही बिरादरी में। तो विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण ताटका का वध करने के पश्चात मलद और करुष उन प्रांतों से आगे निकलते हैं और प्रभु श्री राम वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर उपवन में वो पहुंचे हैं। यहां पर ताटका जहां पर रहती थी सब प्रकार के तमोगुण के लक्षण वहां पर थे, परंतु अब यहां पर प्रभु श्री राम देखते हैं कि सत्वगुण के सभी लक्षण दिख रहे हैं यहां पर, और वो देखते हैं कि बहुत सुंदर वृक्ष जिनके ऊपर सुंदर पुष्प और फल और पक्षियों की चहचहाट, हिरण यहां वहां घूम रहे थे, तो सभी प्रकार के शुभ मंगल चिन्ह यहां पर प्रभु श्री राम को दिख रहे थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे कि हर समय वो विश्वामित्र मुनि को पूछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र मुनि को अपना आचार्य मान लिया था और एक शिष्य की भूमिका वो निभा रहे थे, इसीलिए वो हर समय पूछ रहे थे कि ये जगह कौन सी है, इसका इतिहास क्या है, बताइए। तो अब इस सुंदर उपवन में पहुंचने के पश्चात फिर से प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं विश्वामित्र मुनि को कि यह कौन सी जगह है, और वो सिद्ध आश्रम ये नाम था उस जगह का, विश्वामित्र मुनि ने बताया। और वो कहते हैं कि विष्णु ने यहां पर 1000 वर्ष तपस्या की, कश्यप मुनि जिन्होंने सारी सिद्धियों को प्राप्त किया इसी जगह पर, और फिर हंसते हुए विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को बता नहीं रहे बल्कि याद दिला रहे हैं। वो कहते हैं कि इसी जगह पर वामन देव अर्थात आप आए थे जब आपने बलि महाराज का उद्धार किया, उसके पश्चात क्योंकि इतना आपने विकराल स्वरूप लिया था त्रिविक्रम का और पूरी सृष्टि को नाप दिया था आपने केवल आपके दो पग में, तो आप थोड़ा थक गए थे नापते नापते पूरी सृष्टि को, तो थकान मिटाने के लिए आप इस जगह पर आए थे। तो वामन देव बलि महाराज का उद्धार करने के पश्चात इस सिद्ध आश्रम में आए थे थोड़ा विश्राम करने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि और रामचंद्र जी दोनों जानते हैं, तो इसलिए विश्वामित्र मुनि थोड़ा मुस्कुराते हुए इस विषय में कह रहे हैं कि आप ही आए थे यहां पर, और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्वागत करते हैं और कहते हैं कि मैं यहां पर रहता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा आश्रम है, हालांकि उन्हीं का आश्रम अब था वो, परंतु विश्वामित्र मुनि कहते हैं तवाप्ये तद्यथ मम। वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु श्री राम को कह रहे हैं आइए आप ही के आश्रम में, तवाप्ये आप ही का आश्रम है, क्योंकि वामन देव के रूप में आप ही ने यहां पर विश्राम किया था, विष्णु के रूप में आप ही ने यहां पर 1000 वर्ष तपस्या की थी, तो आप ही का आश्रम है, आइए आप ही के आश्रम में आइए, मैं केवल यहां पर जैसे एक नियंता होता है आश्रम का, मठाधीश, उस प्रकार से केवल मैं देख रेख कर रहा हूं आपके आश्रम की। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि इस आश्रम को सिद्ध आश्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर हालांकि कश्यप मुनि और भगवान विष्णु इन्होंने तपस्या की और सर्व सिद्धि प्राप्त की, इसीलिए तो कहते ही हैं, परंतु इससे ज्यादा यहां पर अब विश्वामित्र मुनि जो कुछ बचा हुआ था उनका, सारे अस्त्र शस्त्र तो दे दिए, ये बाकी रह गया ये आश्रम रहने के लिए, ये भी अब अर्पित कर रहे हैं। तो सब कुछ वो अर्पित कर रहे हैं, इसीलिए वो अब वास्तविक सिद्धि को प्राप्त होंगे, क्योंकि सब कुछ आत्मसमर्पण वो कर रहे हैं। और विश्वामित्र मुनि की तुलना यहां पर बलि महाराज से की गई है, क्योंकि वामन देव आए थे इस सिद्धाश्रम में, तो बलि महाराज की शरणागति, बलि महाराज का आत्मनिवेदन और विश्वामित्र मुनि की शरणागति, इन दोनों में अंतर क्या है? अब आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि महाराज, विख्यात हैं, सब कुछ उन्होंने दे दिया। तीसरा पग जब त्रिविक्रम उठाए हुए थे और पूछ रहे थे कि भाई तुमने मुझे वादा दिया था, अब कहां पर रखूं मैं तीसरा पग, तो बलि महाराज अपना सर देते हैं और उसे ये दिखा रहे हैं कि अब मैं अपना सर्वस्व, सब कुछ मैंने अपना आपको दे दिया था, परंतु अब मैं अपने आप को दे रहा हूं। तो उन्होंने जो शरणागति की पराकाष्ठा है उसे दर्शाया अपने आप को देकर। परंतु यहां पर विश्वामित्र मुनि को आचार्य उनसे भी ज्यादा अधिक शरणागत कह रहे हैं, बलि महाराज से भी ज्यादा अधिक। दोनों में अंतर क्या है? दोनों की शरणागति में स्वेच्छा से किसी ने शरणागति की और किसी ने शरणागति की अनिच्छता से। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि गए अयोध्या और विश्वामित्र मुनि न्योता दिए और आग्रह किए, झगड़ा तक किए। देखिए, पहले उन्होंने न्योता दिया, फिर बाद में आग्रह किया, फिर झगड़ा किया दशरथ महाराज से, और ये सब कुछ कर उन्होंने रामचंद्र जी को यहां पर लेकर आए, और यहां पर लाने के बाद फिर रामचंद्र जी को सब कुछ सर्वस्व अपना अर्पित किया। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि स्वयं जाकर बुलाए हैं और फिर शरणागत हुए हैं, और बलि महाराज इनके प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान को अपने धाम से बलि महाराज के लोक में आना पड़ा, और वो भी छीनना पड़ा जो कुछ था उनका, और द्वंद्व चल रहा था बलि महाराज और शुक्राचार्य के बीच में। हालांकि शुक्राचार्य वो तो बलि महाराज को कह रहे थे कि ना करो कुछ भी, ये विष्णु है। और तब बलि महाराज समझ गए कि अगर विष्णु है तो मुझे देना चाहिए सब कुछ। परंतु अंतर विश्वामित्र मुनि और बलि महाराज में यही था कि वामन देव को आना पड़ा स्वयं, और यहां पर विश्वामित्र मुनि बुलाकर लेकर आए। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि अब बता रहे हैं कि अब ये वास्तविक रूप में सिद्ध आश्रम कहलाएगा, क्योंकि मेरा जो कुछ था अब मैंने सब कुछ आपको दे दिया है। और इसे कहते हैं शरणागति। अब देखिए विश्वामित्र मुनि जो इतने विश्वविख्यात ऋषि हैं, मुनि हैं, इतने शिष्य हैं उनके, और इतनी शक्ति है, परंतु प्रभु रामचंद्र जी के सामने वो अपना कुछ नहीं दिखा रहे। तो वास्तविक शरणागति इसे ही कहते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था और वो चढ़ाई किया करता था पहाड़ों के ऊपर। तो जब ये व्यक्ति चढ़ाई किया करते हैं तो ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर चढ़ते हैं तो अपने आप को पहले एक रस्सी से बांध लेते हैं ताकि यदि फिसल कर गिर भी जाए तो रस्सी से अटक कर वो बचा ले अपने आप को। तो ये व्यक्ति एक पर्वत पर चढ़ाई कर रहा था और काफी ऊंचा पहुंचने के बाद ये फिसला। तो ऊपर से जब फिसला तो फिसलते हुए, हालांकि रस्सी तो थी उसकी कमर से बांधी हुई, परंतु इतनी तेजी से वो जा रहा था नीचे, तो तुरंत उसने सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं बचने का, तो भगवान को बुलाया जाए। जब कोई उपाय नहीं रह जाता तब व्यक्ति भगवान को बुलाता है। तब तक जो कुछ रस्सी है और जो कुछ साधन है अपने आप को बचाने का वह याद आता है, परंतु जब यह समझ में आ जाता है कि और कुछ नहीं केवल भगवान है तो चलो उनको याद किया जाए, वो कुछ करें, तो भगवान को पुकारने लगा बचाने के लिए। और हुआ ऐसा कि वो रस्सी लंबी थी थोड़ी, तो रस्सी से अटक गया वो, और रस्सी वो पहाड़ के किसी कोने से अटक गई और अब वो हवा में लटक रहा था। रस्सी बांधी हुई थी और उसके कारण वो हवा में लटक रहा था। तो अब लटकते लटकते उसने उसको समझ में नहीं आया कि वो कहां पर है, थोड़े बेहोशी की हालत में, और संध्या का समय हो रहा था, अंधेरा सा हो गया तो उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था कि वो कहां पर लटका हुआ है। तो अब सोचा कि भाई पूरी रात ऐसे ही यदि मैं लटका रहूंगा तो सुबह तो फिर मेरा मरण निश्चित है। तो पूरी रात भर प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि यदि आप हैं और यदि आप मुझे देख रहे हैं तो कृपया आकर कुछ कीजिए। तो आधी रात्रि बीत गई प्रार्थना करते गया करते गया, और फिर उसने भगवान की आवाज सुनी और भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे जेब में एक छोटा सा चाकू है जो तुम लिए थे अपने साथ। तो अब वो जान गया कि भाई मैंने तो लिया था, और कोई अगर जान सकता है तो भगवान ही जान सकते हैं। तो उसने कहा हाँ है। तो भगवान ने कहा तो उस चाकू को निकालो और रस्सी काट दो। तो थोड़ा शांत हो गया, बोला रस्सी काट दूं भाई, ये एकमात्र सहारा जिसके वजह से मैं अटका हुआ हूं लटका हुआ हूं और इसे भी काट दूं। तो भगवान ने कहा भाई मुझसे प्रार्थना क्यों की थी, प्रार्थना की प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर दे रहा हूं, पालन करो उसका, काट दो ये रस्सी। तो वो कहता है भगवान से, थोड़ा मैं समय देता हूं, आप सोच के आइए, आप जो कह रहे हैं वो आपने ठीक से देखभाल कर कहा है कि नहीं, क्योंकि समय है हमारे पास दोनों के पास काफी, तो आप थोड़ा सोच विचार कर कहिए, हो सकता है कि कुछ एड्रेस मिसप्लेस हो गया होगा आपका, कोई और कहीं पर किसी और दशा में होगा, और उसको ये सुझाव देने के बजाय आप मुझे दे रहे हैं। तो भगवान कहे ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। तब ये सोचने लगा कि कई बार भगवान भी भ्रमित हो जाते हैं लगता है, एकमात्र रस्सी से मैं अटका हुआ हूं, यही सहारा है और इसे काटने को कह रहा है। तो फिर हुआ ऐसा कि और कुछ घंटे बीते, अब वो रस्सी से अटके अटके दर्द भी हो रहा था, भूख प्यास से व्याकुल, तो बेहोशी की अवस्था में ऐसे ही लटका रहा वो। और जब सुबह हुई तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, लोगों के चलने की आवाजें। तो उसे लगा भाई ये पहाड़ पर कौन से लोग आकर चल रहे हैं। तो कुछ बेहोशी की अवस्था में वो अब देखता है कि सूर्योदय हो गया है और उजाला है, और जैसे ही वो अपने आप को देखता है, रस्सी को देखता है, पहाड़ को देखता है, और जब नीचे देखता है तो क्या देखता है कि केवल एक फुट ऊंचा था वो जमीन से, केवल एक फुट ऊंचा था वो जमीन से। और वो रास्ता था गांव का, जो गांव वाले आ रहे थे जा रहे थे। तब उसे समझ में आया कि रात को जब भगवान ने मुझे वो सुझाव दिया कि बस वो चाकू से रस्सी काट दो और बच गए तुम, परंतु मैंने पूरी रात इस रस्सी पर लटकते हुए बर्बाद की, और मैंने विश्वास नहीं रखा उन भगवान के ऊपर, उनके वाक्यों के ऊपर, क्योंकि मुझे ज्यादा विश्वास रस्सी के ऊपर था, ज्यादा अधिक विश्वास इस रस्सी पर था भगवान से ज्यादा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में भी ये रस्सियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की रस्सियां जिनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं। और जितना ज्यादा हम अपनी बनाई हुई बांधी हुई रस्सियों पर निर्भर रहेंगे, उतना ज्यादा विश्वास भगवान के ऊपर नहीं रहेगा हमारा। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को एक बड़े विशाल ट्रक से बांध दिया गया है रस्सी से, तो विशाल ट्रक से पीछे बांध दिया गया है इस व्यक्ति को, और ये ट्रक चालू हो गया, अब तो ये व्यक्ति अब घसीटा जा रहा है क्योंकि ट्रक से बांधा हुआ है। तो अब ट्रक ऊपर खाबड़ कौन से भी रास्ते से जाता है तो ये व्यक्ति जो पीछे घसीटा जा रहा है ये भी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है। जब अचानक ट्रक रुक जाता है तो इसे धक्का लगता है, अचानक ट्रक चालू होता है, कितनी तेजी से जाता है उतनी तेजी से इसे पीछे अपने आप को घसीटना पड़ता है। तो अब ये सोचता है कि मैं इस रस्सी को खींचकर ट्रक को रोक देता हूं तो सारी समस्या सुलझ जाएगी। तो वो प्रयास करता है रस्सी को और कष्ठा पकड़ने का और खींचने का ताकि ट्रक को रोके वो। तो क्या होगा, वो जितना कष्ठा पकड़ेगा उस रस्सी को उतना ज्यादा वो ट्रक से खींचा जाएगा। तो यदि उसे उस ट्रक से छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा उसे, दो तरीके हैं, या तो उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उस रस्सी को पकड़कर वो ट्रक को रोक दे, तो दूसरा तरीका क्या है, यदि इतनी शक्ति नहीं है तो उस रस्सी को काट दे। और कौन सा तरीका सरल है, रस्सी को काटना या रस्सी को पकड़कर ट्रक को रोकना? रस्सी को काटना ज्यादा सरल है। तो ये जो ट्रक है इसकी तुलना इस भौतिक संसार से की गई है, जो कि बहुत विशाल है, बहुत शक्ति है और दुख देने की शक्ति, और उस रस्सी की तुलना की गई है हमारी आसक्ति इस ट्रक से। तो जब तक उस रस्सी से हम बंधे रहेंगे तब तक वो ट्रक जहां पर भी ले जाएगा, उबड़ खाबड़ रास्ते पर, कभी तेजी से, कभी अचानक रुक जाएगा, जितनी भी सारी तकलीफें वो ट्रक हमें देगा रस्सी के कारण भुगतनी पड़ेगी। तो हम प्रयास करते हैं रस्सी को खींचने का ताकि ट्रक को रोक दें। तो ज्यादातर लोग इस संसार में इतना जो परिश्रम कर रहे हैं अपने आप को सुखी बनाने का, उसकी तुलना वो ट्रक को रोकने से की गई है कि मैं यदि इतना पढ़ लिख लूंगा, मैं यदि इतना पैसा कमा लूंगा, मेरा स्वास्थ्य यदि इतना अच्छा हो जाएगा, जो कुछ मैं इकट्ठा करूंगा उससे मैं ये जो समस्याओं का ट्रक है संसार का, उसे मैं अपनी शक्ति से रोक पाऊंगा। परंतु कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जान लिया है कि न तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है इस ट्रक को रोकने की और न ये ट्रक रुकने वाला है। तो विद्वत्ता किसमें हुई? उस रस्सी को काट दो और बस, फिर जीवन पूर्ण प्रकार से शांतिमय होगा। तो यहां पर शरणागति के विषय में शिक्षा मिल रही है। जैसे महाभारत में हम सब ये प्रसंग जानते हैं, जब द्यूत क्रीड़ा खेली जा रही थी और पांडव सब कुछ हार गए और अंत में फिर द्रौपदी को दांव पे लगाना हुआ। तो जब द्रौपदी को दांव पे लगाया तो सभी वहां पर एक तो आश्चर्यचकित हुए और क्रोधित हुए और अपने आप को इतने शर्मगत मान रहे थे कि क्या हमारे परिवार में यह सब कुछ हो रहा है, कुरु वंश में यह सब कुछ हो रहा है कि द्रौपदी जैसी सती स्त्री को दांव पे लगाया जा रहा है। और कौन कौन उपस्थित थे वहां पर? युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं, भीष्म पितामह जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, विदुर, अर्जुन सबसे बड़े योद्धा, धनुर्धर, भीम, महाबाहो, इन सब के होते हुए द्रौपदी को दांव पे लगाया गया। तो द्रौपदी को तो पहले विश्वास नहीं हुआ जब दुशासन बुलाने गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसी भी कल्पना की जा सकती है। परंतु यहां पर होने जाने वाला था ये सब कुछ, केवल कल्पना नहीं थी। तो द्रौपदी वो भी आश्चर्यचकित हुई और जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण प्रारंभ किया तो ये सब कुछ जब हो रहा है तो कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे, एक प्रकार का शतरंज। तो रुक्मिणी के साथ भगवान खेल रहे थे तो रुक्मिणी, क्योंकि वो अर्धांगिनी है भगवान की, तो रुक्मिणी समझ गई कि यहां पर ये सब कुछ हो रहा है, द्रौपदी को दांव में लगाया जाया है और यहां पर दुशासन खींच कर लाए हैं केशों से पकड़ते हुए द्रौपदी को। तो रुक्मिणी वो भगवान से कहती है कि द्रौपदी आपकी भक्त अनन्या, आप क्या जानते नहीं है, आप केवल मग्न है इस खेल में, वहां पर क्या हो रहा है द्रौपदी के साथ। और वहां पर क्या हो रहा था, द्रौपदी जैसे ही दुशासन ने प्रारंभ किया चीरहरण, तो सबसे पहले द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के तरफ देखती कि आप यहां पर ऐसे ही बैठे रहेंगे, अर्जुन के पास, भीम के पास, इन सब के पास व्याकुल नजरों से देखती है कि कुछ आप लोग कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं रहे। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी को कहते हैं एक और दाव लगाओ, और रुक्मिणी सोच रही कि आप कैसे दीनानाथ हैं। और वहां पर द्रौपदी अब भीष्म पितामह, विदुर, धृतराष्ट्र इनके तरफ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इनके तरफ मुख कर व्याकुल नजरों से पूछ रही है क्या आप लोग भी केवल ऐसे बैठे रहेंगे। और असहाय अवस्था में वो भी एक शब्द नहीं निकाल रहे। तो रुक्मिणी फिर से कृष्ण को कह रही है कि ये आप किस प्रकार के व्यक्ति मुझे बताइए, समझ में नहीं आ रहा मुझे अब। तो कृष्ण कहते एक और दांव लगाओ, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अब दुशासन ने प्रारंभ किया चीरहरण करना, तो द्रौपदी अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़े है। तो रुक्मिणी जैसे कि लाइव आंखों देखा हाल बता रही है कृष्ण को, अभी ये हो रहा है। तो पहले रुक्मिणी ने कहा कि अभी वो पांडवों की तरफ मुख किए है, अभी भीष्म की तरफ, अभी वो स्वयं दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ने का कोशिश कर रही है। कृष्ण ने कहा एक और दांव लगाओ। तो रुक्मिणी तो पूरा भ्रमित हो रही थी। तो जब द्रौपदी ने देखा कि ये दुशासन जिसके बाहुओं में 10,000 हाथियों का बल है, और द्रौपदी एक अबला स्त्री, वो क्या कर सकती थी इसके बल के सामने, तो दोनों हाथ से पहले प्रयास किया, कुछ नहीं हो पाया। तो फिर द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर कर अब भगवान को पुकारा, परंतु एक हाथ अभी भी साड़ी को पकड़े थी वो। तो रुक्मिणी कहती है अभी वो बुला रही है आपको। तो भगवान कहते हैं एक और खेल खेलो। फिर द्रौपदी दोनों हाथ उसने छोड़े, परंतु साड़ी को अपने दांतों में पकड़ लिया। रुक्मिणी कहती है अब, भगवान कहते हैं एक और खेल। तो द्रौपदी ने अब वो भी छोड़ दिया दांतों से, और दोनों हाथ ऊपर कर वो भगवान को पुकार रही है, हे गोविंदा, हे गोपाल, परंतु फिर भी भगवान रुक्मिणी को कहते हैं एक और। और इतना सब होने के पश्चात इस स्थिति में द्रौपदी वो रोने लगी, अब आंखों से आंसू गिरने लगे द्रौपदी के। और जैसे ही द्रौपदी रोने लगी, रुक्मिणी ऊपर उठ के देखती है भगवान गायब। बोलना, सूचना देना तो दूर की बात है, भगवान दिखाई भी नहीं दे रहे थे रुक्मिणी को। उस समय भगवान साड़ी के रूप में अवतरित हुए और द्रौपदी को बचाया। तो भगवान रुक्मिणी को कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था क्या हो रहा था द्रौपदी के साथ, परंतु मैं प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि द्रौपदी कभी पांडवों की तरफ देख रही थी, उसे विश्वास था कि ये बचाएंगे। फिर द्रौपदी सोच रही थी कि भीष्म, द्रोणाचार्य ये बचाएंगे, तो मैं क्यों जाऊं जब उसने बुलाया नहीं मुझे। और फिर वो सोच रही थी कि मैं अपने हाथों से अपने आप को बचाऊंगी, तो उसे फिर विश्वास था अपने हाथों के ऊपर, इसलिए मैं रुक गया। फिर उसने एक हाथ ऊपर किया, परंतु एक हाथ फिर भी पकड़े थी वो। फिर उसने अपने दांतों पर विश्वास किया, परंतु जब उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए तो मैं तैयार था अब जाने के लिए, परंतु मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था द्रौपदी तक पहुंचने का। तो रुक्मिणी ने पूछा, कौन सा रास्ता, ये कौन से रास्ते के विषय में आप कह रहे हैं? तो कृष्ण कहते हैं, मैं अश्रु पथ पर चलता हूं। अश्रु पथ कहते हैं ये जो आंसू हैं, इनसे जब भक्त पथ बनाता है तो मैं केवल उस अश्रु पथ पर चल सकता हूं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो जब तक उसकी आंखों से अश्रु नहीं आते तब तक मुझे पथ नहीं मिलता चलने का। तो देखिए, भगवान जब शरणागति मांगते हैं और जब अपनी प्रेमा भक्ति देते हैं तो अश्रु कीमत है, और द्रौपदी के अश्रु कब निकले? जब उसने पांडवों का परित्याग किया, भीष्म का परित्याग किया, अपने स्वयं की शक्ति का परित्याग किया, सब का परित्याग कर तब जाकर द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो सोचिए हमारे जीवन में ऐसे कितनी स्थितियां हैं, कितने लोग हैं, कितनी परिस्थितियां हैं जिनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं भगवान को छोड़कर। तो अश्रु तो दूर की बात है, और अश्रु पथ और भी दूर की बात, और भगवान कब आएंगे क्या पता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में कहते हैं, नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्रया गिरा, कि कब वो दिन आएगा हे भगवान जब आपका नाम उच्चारण करने से मेरे आंखों से आंसू आएंगे, अश्रु प्रवाहित होंगे। हमें कभी लगता है कि ऐसा कुछ दिन आएगा एक दिन, जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय हमारे आंखों से अश्रु प्रवाहित हो? तो शरणागति, यहां पर विश्वामित्र मुनि अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि ये जो आश्रम, इसे सिद्ध आश्रम इसलिए कहा गया है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं इनमें जो अंतिम शिक्षा है वो शरणागति की पराकाष्ठा सुना रही है हमें। और ये जो अंतिम श्लोक है उनकी शिक्षाओं का, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु नमस्ते मत प्राणास्तुस्ते एव नापरः। वो कह रहे हैं कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, हालांकि ये जो श्लोक है अंतिम श्लोक, ये अंतिम श्लोक श्रीमती राधा रानी गा रही हैं, उनकी भावना है ये अंतिम श्लोक। तो इसमें श्रीमती राधा रानी वो कहती हैं कृष्ण से कि यदि आप आलिंगन करें मुझे, यदि आप मुझे अपने चरणों के नीचे कुचल दें क्रोध पूर्वक, यदि प्रेमवश आलिंगन करें और क्रोधवश कुचल दें, पिनष्टुमाम, या आप मुझे दुर्लक्ष करें जो कि इन दोनों से भी अधिक शक्तिशाली है, किसी को यदि ठेस पहुंचानी है तो यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर क्रोध करता है तो कम से कम उसे कुछ मान रहा है इसलिए क्रोध कर रहा है, परंतु उसके ऊपर ध्यान न देना, दुर्लक्षता, इससे अधिक ठेस किसी व्यक्ति को कोई नहीं पहुंचा सकता। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि यदि आप दुर्लक्ष भी कर दें मुझे, फिर भी वो कहती हैं मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, कि आप ही मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे हर अवस्था में। इसीलिए भक्त कहते हैं कि यदि भक्ति करते करते एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर कहें कि तुम जितनी भी भक्ति कर रहे हो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, फिर भी भक्त भक्ति छोड़ेगा नहीं, उसे कहते हैं शरणागत भक्त। कि यदि स्वयं भगवान आकर कह दे कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है, फिर भी वो कहेंगे ठीक है परंतु मैं आप ही की भक्ति करूंगा, इसे कहते हैं शरणागति। और विश्वामित्र मुनि ये दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से, और इसीलिए इसे सिद्ध आश्रम कहा गया है जहां पर विश्वामित्र मुनि रह रहे थे। तो रामचंद्र जी अब वो देखते हैं कि बहुत से वहां पर ऋषि मुनि उस आश्रम के जो कि विश्वामित्र मुनि के शिष्य भी थे, वो सब अपने पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर रामचंद्र जी की सुंदरता देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि से थोड़ा हटकर अब इन ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं आया हूं तो मैं अपना संग इनको भी दूं जो इतने आतुर हैं। तो उनकी आतुरता देखकर स्वयं भगवान विश्वामित्र मुनि को छोड़कर इनके निकट पहुंचे, उनकी उत्कंठा देखकर। और ये उत्कंठा शब्द बहुत अच्छा है संस्कृत में, जिसका अर्थ है उत्कंठ। कंठ हम जानते हैं, जब व्यक्ति इस कंठ को ऊपर कर कर किसी की प्रतीक्षा करता है, जैसे गोपियां वो किया करती थी भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा संध्या के समय जब भगवान गायों को लेकर आते थे, तो उत्कंठित भाव से वो प्रतीक्षा करती थी कृष्ण की। तो उत्कंठा कहते हैं जब इस कंठ को ऊपर कर कर अपने प्रेमी को देखते रहना, प्रतीक्षा करते रहना। तो ये सारे ऋषि मुनि उत्कंठित भाव से अपने कंठ को ऊपर किए हुए वो देख रहे थे श्री रामचंद्र जी की सुंदरता। तो जब व्यक्ति इतना उत्कंठित रहता है तो स्वयं भगवान पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने विश्वामित्र मुनि को छोड़कर इनके पास गए अपना संग देने के लिए। और फिर इन ऋषि मुनियों को भगवान पूछते हैं, केवल वो बहाना था, वो तो सब कुछ जानते थे, तो पूछते हैं कि बताइए ये मारीच और सुबाहु ये किस समय और कहां पर आकर आक्रमण करते हैं आपके ऊपर, आपके यज्ञों के ऊपर। तो ऋषि मुनि को जब ये प्रश्न पूछा गया तो वो कहते हैं प्रभु रामचंद्र से कि आज से 6 दिन तक और 6 रात तक यज्ञ चलेगा विश्वामित्र मुनि का, और ये मारीच और सुबाहु ये रात्रि के समय आते हैं और किसी भी रात्रि आ सकते हैं, ये 6 रात्रियों में से किसी भी एक रात्रि में ये आ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरे 6 रात्रि यदि वो नहीं आए तो राम और लक्ष्मण को जगा रहना होगा नाइट ड्यूटी पर। और क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने अब मौन व्रत ले लिया 6 दिनों के लिए, तो जो कुछ राम और लक्ष्मण को करना था वो स्वयं ही सब कुछ निर्णय लेना था उन्हें। तो राम और लक्ष्मण वो 6 दिन 6 रात्रि वो सोए नहीं और कुछ खाए नहीं पिए नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं मारीच और सुबाहु का। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि मारीच और सुबाहु इनकी तुलना हमने किससे की थी, कल याद है किसी को? संचित और आगामी कर्म। और सुबाहु किसका प्रतीक है? संचित कर्म। और मारीच आगामी कर्म। तो यहां पर कहा गया है कि भगवान आतुर रहते हैं हमारे संचित और आगामी कर्म को नाश करने के लिए, मारीच और सुबाहु को नाश करने के लिए भगवान इतने आतुर हैं कि सोए नहीं 6 रात 6 दिन। तो उसी प्रकार से अंदर परमात्मा स्वरूप जो भगवान है वो भी पता नहीं कितने काल से जगे हुए हैं वो। जैसे प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी ये परमात्मा हृदय में खड़े हैं बैठे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा खड़े हैं, और वो चतुर्भुज रूप में अस्त्र शस्त्र लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब वो जीवात्मा उनकी तरफ होगा, और उसके जितने भी संचित और आगामी कर्म है उसे नष्ट करेंगे। वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे यहां पर प्रभु श्री राम सो नहीं रहे, इतनी आतुरता से जागरूक अवस्था में वो अब मारीच और सुबाहु का वध करेंगे। इसीलिए कहा गया है कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो जीव है उसके निकट दो व्यक्ति हैं। जीव बीच में है, एक तरफ है भगवान कृष्ण बहुत निकट है, और एक तरफ है माया वो भी बहुत निकट है। तो कृष्ण भूलिया जीव, जैसे ही जो जीव है कृष्ण को भूलता है तो उसका अर्थ क्या है, माया को याद करता है। या हम ये कह सकते हैं जब माया को याद करता है तो कृष्ण को भूलता है, दोनों को एक साथ याद या भूलना नहीं हो सकता। तो जैसे श्लोक में कहा गया है निकटस्थ तारे माया झपटिया धरे, कि माया जो कि निकट है वो झपट लेती है उस व्यक्ति को जो कृष्ण को भूल जाता है या विमुख होता है। और इसी श्लोक को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब माया की तरफ जाता है तो माया झपट लेती है, उसी प्रकार से जब कृष्ण की तरफ उन्मुख होता है जीव तो कृष्ण भी झपट लेते हैं। जैसे माया झपट लेती है वैसे यदि उन्मुख हुए कृष्ण की तरफ तो कृष्ण भी झपट लेते हैं और अपनी भक्ति में लगा देते हैं। यह है भगवान की आतुरता, क्योंकि झपटने के लिए आतुर होना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि जागरूक या आतुर नहीं है तो किसी के ऊपर झपट नहीं सकेगा। जैसे शेर इत्यादि जब वो झपटते हैं अपने शिकार के ऊपर तो वो तैयार आतुर रहते हैं झाड़ी के पीछे, जैसे ही थोड़ा सा वो शिकार बाहर आया तुरंत फिर झपटते हैं। तो उसी प्रकार से दोनों आतुर हैं, माया भी आतुर है और कृष्ण भी आतुर है। केवल हमें क्या देखना है कि हम कहां पर अपना मुख कर रहे हैं। तो जो छठी रात्रि उसका जब अंत आया तब मारीच और सुबाहु, उनका टाइमिंग बहुत परफेक्ट हुआ करता था, क्योंकि वो सबसे पहले इनको यज्ञों में लगाते थे कि हाँ आप कीजिए यज्ञ, जितना सब कुछ धन राशि सब कुछ लगाना है लगाइए, और अंत में आकर वो सब कुछ विध्वंस कर देते थे। तो अब यज्ञ जब संपन्न होने जाने वाला था तो छठी रात्रि के अंत में मारीच और सुबाहु वहां पर आते हैं, और वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक मायावी अग्नि को उत्पन्न करते हैं और पूरे आकाश में मायावी बादल फैला देते हैं, और उन बादलों से रक्त की वर्षा होती है, खून की वर्षा, और एक खून की नदी बनती है जो उस यज्ञ कुंड की तरफ बहती हुई आती है, और इसी प्रकार से वो उसको विनष्ट कर देते थे यज्ञ को। तो यहां पर जो प्रभु रामचंद्र जी देखते हैं कि ये मारीच और सुबाहु अब ये सब करतूतों में लगे हैं, तो प्रभु श्री राम मारीच को प्रहार करने के लिए मानव अस्त्र निकालते हैं, और उस अस्त्र से मारीच को 100 योजन दूर फेंकते हैं, 800 मील। 800 मील यहां से दिल्ली शायद 800 मील है, कितना मील है आप लोग जानते हैं 800 मील कितना होता है। तो 800 मील भगवान ने मारीच को फेंक दिया, परंतु मारीच को मारा नहीं। बहुत सुंदर आचार्य उत्प्रेक्षा करते हैं इसके विषय में कि मारीच को क्यों नहीं मारा, परंतु सुबाहु, सुबाहु जो कि संचित कर्म है, सुबाहु के लिए भगवान ने अग्नि अस्त्र निकाला और अग्नि अस्त्र से सुबाहु को जल के वहीं पर राख कर दिया। तो सुबाहु का वध किया परंतु मारीच को केवल उठाकर फेंका फुटबॉल की तरह, परंतु 800 मील दूर। तो मारीच ये जो शब्द है इसे मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा आप जानते हैं, रेगिस्तान में जब सूर्य की रोशनी से रेती के ऊपर जब वो गर्म रोशनी गिरती है सूर्य की, तो उससे पानी दिखता है वो रेती के सतह के ऊपर, हालांकि कुछ पानी होता नहीं, उसे कहते हैं मारीच, उसे कहते हैं मृग तृष्णा। तो मारीच जिसके नाम का अर्थ ये है, तो मारीच को जो कि आगामी कर्म है, जो कि एक मृग तृष्णा के समान ही है, कि यदि हमें ज्ञान हो जाए, विद्या हो जाए, तो आगामी कर्म समझ में आ जाएगा कि वो क्या है वास्तविक रूप में। और भगवान ने मारीच को इसलिए मारा नहीं क्योंकि भगवान जानते थे कि आगे चलकर ये मारीच को मुझे उपयोग में लेना है। और कैसे उपयोग में ले भगवान, मारीच ने जब वो सुनहरे हिरण के रूप में आया और सीता को प्रलोभित किया और रामचंद्र जी गए उसे मारने के लिए लेने के लिए, तो रावण आया, तो मारीच ने ये सब कुछ किया था, राम को दूर किया और रावण वहां पर आकर सीता का हरण किया। तो भगवान जानते थे कि आगे चलकर रावण का वध करना है तो ये मारीच यही वो कार्य करेगा। तो रावण का वध करने हेतु मारीच का वध नहीं किया। तो उसी प्रकार से भगवान किसी भक्त का जो आगामी कर्म होता है उसे संभाल कर रखते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये भक्त यदि कुछ गलती कर देगा तो इसे शुद्ध करने के लिए इसका आगामी कर्म मैं इस्तेमाल करूंगा। जैसे भगवान ने मारीच का इस्तेमाल किया रावण का वध करने के लिए। यदि देखिए रावण के अंदर भय था, यदि रावण पूर्ण प्रकार से शक्तिशाली हुआ होता तो वो रामचंद्र के सामने हरण करता सीता का, क्योंकि रावण के अंदर भय था इसलिए उसने मारीच को पहले भेजा, राम को दूर किया, फिर हरण किया सीता का। तो अंदर से रावण जानता था कि यही व्यक्ति है जो मुझे मार सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान ये जो आगामी कर्म होता है किसी भक्त का उसे बचा कर रखते हैं, उस भक्त को और शुद्ध बनाने के लिए, उसके सारे अनर्थों का नाश करने के लिए। और सुबाहु, सुबाहु जो कि संचित कर्म है, पहले का बना हुआ संचित कर्म, तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रारब्ध, एक संचित, एक आगामी कर्म। तो ये जो संचित कर्म सुबाहु जिसका प्रतीक था, तो कहा गया है इसका नाम ही था सुबाहु, जो कि अपने विशाल कंधों और बाहुओं से वो ये संचित कर्म को इकट्ठा करता रहे अपने जीवन में। और जो संचित कर्म होता है ये सुबाहु जैसे महान बाजुओं से ये कर्मों का जो ढेर है उसको और बढ़ाता रहता है बद्ध जीवात्मा के जीवन में, और इतना बड़ा ढेर बन जाता है कि इसे हिला पाना असंभव है। तो एक ही उपाय है, आग लगाओ। तो भगवान ने इसलिए अग्नि अस्त्र इस्तेमाल किया इस संचित कर्म सुबाहु का नाश करने के लिए, उसे जलाकर राख किया। इसीलिए एक भक्त के जीवन में जो पिछला संचित कर्म होता है वो जलकर भस्म हो जाता है जब वो भक्ति में लगता है शुद्धता से, और उसकी तुलना उसको एक न्याय कहते हैं संस्कृत में, जिसे कहते हैं पाताल दग्ध न्याय। पाताल दग्ध न्याय का अर्थ है जैसे एक कागज को यदि आप जलाओ, तो आपने देखा होगा जब कागज को जलाते हैं तो वो अलग एक आकार लेता है, जलते जलते वो कागज अलग अलग आकार लेता है, और एक आकार में पूरा जलने के पश्चात जब काला हो जाता है वो जो कागज, काला होने के पश्चात भी एक आकार में वो बना रहता है, परंतु उसको जाकर थोड़ा सा आप टच कीजिए तुरंत बिखर जाएगा वो, हालांकि पूरा जल चुका है फिर भी उसका आकार बना रहता है। तो उसी प्रकार से जो संचित कर्म है चाहे पूरा जला भी दें तो उसका आकार बना रहता है जीवन में। तो जैसे उस कागज को स्पर्श किया और वो कागज बिखर गया, उसी प्रकार से एक भक्त जब शरीर को छोड़ देता है तो जितना भी संचित कर्म है वो सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है और वो जाता है भगवत धाम। इसे कहते हैं पाताल दग्ध न्याय, एक प्रकार का वो कपड़ा जैसा होता है पाताल, जिसे जलाने से कागज के समान वो आकार रखता है, हालांकि जल चुका है पूरा और कुछ जलना बाकी नहीं रह गया उसके अंदर। यदि उस जले हुए कागज को और आग लगाओ तो नहीं जल पाएगा वो कागज, एक उसकी सीमा होती है जलने की। उसी प्रकार से संचित कर्म पूरा नष्ट या जलने के पश्चात उसका आकार बना रहता है, मृत्यु के समय पूरा उसका आकार टूटता है और जीवात्मा भगवत धाम जाता है। तो इसलिए भगवान ने अग्नियास्त्र इस्तेमाल किया इस सुबाहु का वध करने के लिए। अब सारे ऋषि मुनि इतने प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम ने केवल अपने एक एक अस्त्रों से इनका संहार किया है, तो वो अब भगवान श्री राम को यज्ञम कहकर उल्लेख कर रहे हैं। यज्ञम ये एक भगवान का नाम है, भगवान विष्णु का नाम है यज्ञम, विष्णु सहस्त्र नाम में जो सहस्त्र नाम है विष्णु के उनमें से एक नाम है भगवान विष्णु का यज्ञम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को वो यहां पर यज्ञम कहकर उल्लेख कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम यज्ञ से उत्पन्न हुए, ये एक कारण था उनको यज्ञम कहने का। और दूसरा कारण यह था कि वो विश्वामित्र मुनि का यज्ञ उसकी रक्षा करने के लिए आए थे, इसलिए उसे उन्हें यज्ञम कहा। और अब तीसरा कारण वो ये कहकर यज्ञ पुकार रहे हैं भगवान को कि भगवान अब यहां से जनक महाराज के यज्ञ में जाएंगे। और चौथा कारण यह था कि अब वहां पर जाकर सीता से विवाह करेंगे जो कि पाई गई थी यज्ञ भूमि में। तो उन्हें यज्ञ हम कह रहे हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति यज्ञ से हुई, विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए और जनक महाराज के यज्ञ की तरफ जाएंगे, सीता से विवाह करेंगे जो उत्पन्न हुई यज्ञ भूमि में, इसीलिए भगवान को यहां पर वो यज्ञ कहकर पुकार रहे हैं। और सभी ऋषि मुनि वो विश्वामित्र मुनि के पास जाकर कहते हैं कि हम इतने प्रसन्न हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का संग करने, तो हम चाहते हैं कि हम सब जो मिथिला जा रहे हैं तो इन्हें भी ले चलें हमारे साथ। और वहां पर महाराज जनक जो महायज्ञ कर रहे हैं ये भी उसमें भाग लें, और हम देखना चाहते हैं कि ये शिव धनुष को किस प्रकार से उठाएंगे, क्योंकि बहुत ये शिव धनुष जनक महाराज के महल में एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सामग्री थी और सभी जानते थे कि यह शिव धनुष को कोई भी हिला भी नहीं पा रहा, उसे उठाना और प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। तो ये इनको लग रहा था कि ये रामचंद्र जी कर देंगे, तो ये मैच देखने इनको ले चले वहां पर। ये शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा जब चढ़ाएंगे इसे देखने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि पहले से ही उनका प्रयोजन तो था ही, तो विश्वामित्र मुनि बोले कि हाँ मैं पहले से ही सोच रखा हूं। हालांकि विश्वामित्र मुनि इसीलिए तो आए थे, जिसकी हम चर्चा करेंगे कि विश्वामित्र मुनि ये पहले आचार्य हुए अब रामायण में जिन्होंने सीताराम का मिलन कराया। तो ये पहले आचार्य, और दो आचार्य आगे आएंगे जिन्होंने सीताराम का मिलन कराया, और वो कौन है अभी नहीं बताएंगे। तो ये पहले आचार्य जिन्होंने सीताराम का मिलन कराया, उनका विवाह कराया, इसलिए विश्वामित्र मुनि तो पहले से ठाने हुए थे कि ले जाएंगे। तो अब वो सिद्ध आश्रम से आगे निकले, परंतु निकलते निकलते विश्वामित्र मुनि सभी वहां के ऋषि मुनियों को कहते हैं, वो प्रदक्षिणा करते हैं सिद्ध आश्रम की और कहते हैं कि अब मैं फिर नहीं लौटने वाला यहां पर, क्योंकि उनका जो प्रयोजन था सब कुछ शरणागत करना भगवान के चरण कमलों पर और सीता और राम का मिलन कराना, उसके पश्चात वो जाने वाले थे हिमालय और भगवत धाम। तो अंतिम प्रदक्षिणा उन्होंने की सिद्धाश्रम की जहां पर वो रहते थे कि अब मैं फिर से नहीं आने वाला यहां पर, और फिर वो आगे निकले। तो अलग अलग प्रांतों से निकले और प्रभु राम जिस किसी प्रांत पर पहुंचते इनके साथ, तो प्रभु श्री राम पूछते कि एक जगह थी सोना नदी के तट पर, तो प्रभु श्री राम पूछते हैं इसका इतिहास बताइए। तो वहां पर बैठकर विश्वामित्र मुनि उसका इतिहास बताते हैं। फिर गंगा के तट पर पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम पूछते हैं, देखिए जिनके चरण कमल से निकल रही है गंगा उनके विषय में वो पूछ रहे हैं कि बताइए ये गंगा का इतिहास क्या है, ये कैसे इस पृथ्वी पर आई। तब फिर पूरा जो इतिहास है गंगा का, गंगा कैसे इस पृथ्वी पर आई वो सुनाते हैं विश्वामित्र मुनि। और फिर एक विशाल देश नामक प्रांत पर पहुंचते हैं, जहां पर अब फिर से रामचंद्र जी पूछते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तब फिर वो बताते हैं कि इसका संबंध था समुद्र मंथन की लीला से, तो पूरी समुद्र मंथन की लीला भगवान को सुना रहे हैं। और फिर ये सब प्रांतों से गुजरते हुए अब वो प्रवेश करते हैं मिथिला नगरी में। तो जैसे ही मिथिला नगरी में विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण और सारे ऋषिगण प्रवेश करते हैं, तो इतनी सुंदर ये मिथिला नगरी, इतने सुंदर उपवन, इतने सुंदर वृक्ष पक्षी पशु और इतने सुंदर निवासी मिथिला के, इतने सुंदर महल, इतना सुंदर वातावरण, सब कुछ ये देखते इतने सभी उसमें समाधस्थ हो गए देखते हुए मिथिला की सुंदरता को। तो सभी और किसी को देख नहीं रहा था, केवल देख रहे थे कितने सुंदर ये नगरी है, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी और कहीं पर देख रहे थे। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मिथिला नगरी की सुंदरता और ऐश्वर्य को बिल्कुल नहीं देखा, उन्होंने देखा कि कोने में एक टूटा हुआ सा झोपड़ा है जिस जो दिखाई भी नहीं दे रहा था, देखने के लिए थोड़ा निकट जाकर देखना होता था उसे, टूटा हुआ झोपड़ा, केवल वहां पर कांटे उगे हुए थे, अंधेरा और सब प्रकार के वहां पे बुरे चिन्ह दिख रहे थे। तो सभी मिथिला नगरी की सुंदरता को देख रहे थे, प्रभु रामचंद्र जी उस टूटे हुए झोपड़े की तरफ देख रहे थे। और उन्होंने विश्वामित्र मुनि को फिर पूछा कि ये सब तो ठीक है, ये झोपड़ा टूटा हुआ और इतनी सुंदर नगरी में ये ऐसा कैसा दिख रहा है। तो विश्वामित्र मुनि वो रामचंद्र जी से कहते हैं, अरे अरे मैं क्षमा मांगना चाहता हूं आपसे, कि मेरा एक प्रयोजन आपका आपको यहां पर लाने का यह था कि आपको मैं झोपड़े की तरफ ले आऊं, और यह मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको बताऊं और मैं आपको दिखाऊं इस झोपड़े को, इसके पहले आपने ही देख लिया। इसीलिए आप हैं पतित पावन अवतार, क्योंकि वहां पर रामचंद्र जी का उद्धार करना था अहिल्या का। तो विश्वामित्र मुनि अब अहिल्या की कहानी कैसे बताते हैं कि अहिल्या जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी और वो बहुत ही सुंदर थी और पतिव्रता भी थी, और वो इतनी सुंदर थी कि इंद्र आकर्षित हो गया अहिल्या से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गौतम ऋषि जब वो स्नान के लिए गए तो इंद्र ने क्या किया, अपने आप को गौतम ऋषि के वेश में परिवर्तित कर अहिल्या की कुटिया में आए, गौतम ऋषि की कुटिया में, और अहिल्या समझ गई। जैसे ही गौतम ऋषि के रूप में इंद्र वहां पर आए तो अहिल्या समझ गई कि ये इंद्र है। देखिए इतनी सती स्त्री थी अहिल्या कि यदि उनके पति के रूप में कोई आया और वो भी इंद्र जो कि सभी देवताओं के इंद्र हैं, राजा हैं, वो जब रूप किसी का लेते हैं तो कोई साधारण व्यक्ति है तो बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा। तो अहिल्या पहचान गई कि ये इंद्र है। तो इंद्र काम वासना से पीड़ित अहिल्या को कहता है कि मैं समागम करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, और अहिल्या वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही थी कि देखो मुझसे कौन आकर्षित हुआ है, मुझसे इंद्र जो महेंद्र है वो आकर्षित हुए हैं मुझसे। तो अहिल्या उस समय वो अपनी पतिव्रता पद से गिर गई और इंद्र की इच्छा पूरी की अहिल्या ने, और इंद्र जब वहां से बाहर आ रहे थे तो अहिल्या उस समय डर गई कि यदि मेरे पति को पता लग जाएगा, तो इंद्र को कह दिया कि इस बात को छुपा कर रखना, परंतु जैसे ही इंद्र बाहर आ रहे थे गौतम ऋषि अंदर आ रहे थे और गौतम ऋषि ने देखा ये दूसरे गौतम ऋषि कौन है, तो समझ गए ये इंद्र है और इंद्र ने क्या करतूत की है। तो वहीं पर इंद्र को श्राप देते हैं कि तुम नपुंसक बन जाओ और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देते, हे दुराचारिणी तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, और अहिल्या को श्राप देते हैं, उसे वहीं पर राख बना देते हैं कि इसी आश्रम में केवल हवा पर जीती रहे तू राख के रूप में, और कई कहते हैं पत्थर बना दिया। तो हजारों वर्ष तू यहीं पर सड़ती रहे, ये श्राप गौतम ऋषि ने अहिल्या को दिया। परंतु अहिल्या अब गौतम ऋषि के चरणों पर गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। तो गौतम ऋषि को थोड़ा तरस आया और गौतम ऋषि ने कहा कि ठीक है मैंने श्राप तो दे दिया है, वो तो मैं पीछे ले नहीं सकता, परंतु इसके साथ एक वरदान मैं अवश्य दे सकता हूं कि जब प्रभु श्री राम आएंगे त्रेता युग में तो उनके जब चरण कमल लगेंगे तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारा उद्धार होगा। परंतु यह घटना हुई थी सतयुग में, और त्रेता युग द्वापर युग के बाद आने वाला था, तो गणना से सतयुग के बाद द्वापर युग आता है, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग। परंतु यहां पर देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को पता लगा कि मैं जाकर अहिल्या का उद्धार करने वाला हूं परंतु मेरा अवतार त्रेता युग में होने वाला है, तो रामचंद्र जी कृष्ण के पास गए और एक्सचेंज कर लिया अपना युग। प्रीपोन कर लिया अपना विजिट केवल किसके लिए? अहिल्या के लिए। पूरा एक युग पहले कर दिया। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि ये नाम तो त्रेता है परंतु ये दूसरे श्रेणी में कैसे आ गया? ये इसलिए आया क्योंकि भगवान अहिल्या का उद्धार करने चाहते थे, केवल अहिल्या का उद्धार करने के लिए पूरे युग को पहले ले लिया। तो यहां पर भगवान अपनी कृपा अब अहिल्या को देते हैं और अपने चरणों से स्पर्श करते हैं, और जैसे ही चरणों से स्पर्श करते हैं तुरंत अहिल्या वो पुनर्जीवित हो जाती है अपने पहले के स्वरूप में। परंतु अब वो उसके अंदर वो भौतिक सुंदरता नहीं थी, हालांकि सुंदर तो थी वो, परंतु क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ है तो अहिल्या के अंदर शुद्ध प्रेमा भक्ति की सुंदरता दिख रही थी। और तुरंत गौतम ऋषि आ गए। अब जैसे अहिल्या शुद्ध हुई तो गौतम ऋषि आ गए और गौतम ऋषि अब वो अहिल्या का गुणगान करते हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से तुम एक दुराचारिणी हो गई थी, इतना बुरा आचरण तुमने किया था, परंतु क्योंकि तुम एक प्रकार से निष्पाप थी, क्योंकि तुमने अपने तरफ से चेष्टा नहीं की और क्योंकि तुम निर्मल थी उस दृष्टिकोण से, इसलिए मुझसे ज्यादा कृपा तुम्हें मिली कि भगवान श्री राम के चरण कमल तुम्हारे ऊपर पड़े। हालांकि मैं अपने आप को तपस्वी और शुद्ध मान रहा था परंतु मेरे ऊपर इतनी कृपा नहीं हुई जितनी तुम्हारे ऊपर हुई कि स्वयं भगवान आकर अपने चरण कमल रखे हैं तुम्हारे ऊपर। तो तुरंत अहिल्या अब स्वागत करती है राम और लक्ष्मण का और अर्घ्य और पद्य से। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि दो शिक्षाएं मिल रही हैं अहिल्या के उद्धार के प्रसंग से। सबसे पहली शिक्षा ये मिलती है कि अहिल्या के अंदर कोई गलत धारणा नहीं थी, परंतु उस क्षण जब इंद्र वहां पर आए और इंद्र ने प्रस्ताव रखा तो केवल उस क्षण अहिल्या थोड़ा सा भ्रमित हो गई। तो हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे भक्ति के पथ में हम ठीक से भक्ति भी कर रहे हो परंतु हमें उन क्षणों से बचकर रहना चाहिए जिन क्षणों में हम भ्रमित हो सकें। जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने कहा, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि ये जो भक्ति का पथ है यदि कोई व्यक्ति स्वल्पम थोड़ी मात्रा में भी कर दे भक्ति भगवान के प्रति, त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े भय से बच सकता है वो व्यक्ति। और सबसे बड़ा भय क्या है इस मनुष्य जीवन में? इस मनुष्य शरीर को खोना और पशु के शरीर में जाना, ये सबसे बड़ा भय प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में। तो यदि हम इस श्लोक को लें, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्प भक्ति करने से त्रायतो महतो भयात हो सकता है, तो स्वल्प इंद्रिय भोग करने से महतो भयात में पड़ सकते हैं हम। यदि थोड़ी सी भक्ति हमें सबसे बड़े भय से बचा सकती है तो यदि इसे उल्टा कैलकुलेशन करें तो थोड़ा सा इंद्रिय भोग हमें सबसे गहरे भय में डाल सकता है, जैसे यहां पर अहिल्या। तो यह शिक्षा मिलती है कि हर समय अजामिल, यह भी एक उदाहरण है, सब कुछ उसका ठीक चल रहा था, केवल एक दृश्य उसने देख लिया और उसने कोई चेष्टा नहीं की। वो जो वैश्या थी और शूद्र वो जब भोग कर रहे थे तो अजामिल ने कोई चेष्टा नहीं की थी, केवल थोड़ा सा उसने अपने मन में उसे रखा, थोड़ा सा मन में रखा उस विचार को, जो उसकी आंखों के सामने पड़ा था। तो देखिए अजामिल ने वो भी सतयुग में एक बार अपने जीवन में कुछ क्षणों के लिए उस प्रकार का दृश्य देखा और अजामिल की स्थिति हम जानते हैं क्या हुई। यमदूत का दर्शन करना पड़ा उसे अंत में, हालांकि बचा लिया गया वो। तो सोचिए कि इस कलयुग में जहां पर ये अजामिल कांड सब जगह पर चल रहे हैं और जहां पर हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं अजामिल की तरह इतना शुद्ध, तो सोचिए कि हमारी स्थिति, हमें कितना सावधान होना चाहिए इस भक्ति के पथ में कि थोड़ा सा भी हम भ्रमित हो जाएं, डिविएट हो जाएं। तो देखिए अहिल्या और अजामिल का क्या हुआ। तो ये एक शिक्षा मिलती है। और दूसरी शिक्षा मिलती है, यहां पर गुणगान हो रहा है भगवान के चरण कमलों का, क्या शक्ति है भगवान के चरण कमलों में। उद्धव श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, विशेष रूप से भगवान के चरण कमलों का गुणगान करते हुए इस श्लोक में वो कहते हैं, तापत्रेण अभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भव ध्वनीश पश्यामि नान्य चरणं तवांग्रि द्वंद्वात्वपत्रात् अमृताभिवर्षात्। बहुत ही सुंदर वो उदाहरण दे रहे हैं भगवान के चरण कमलों का। उद्धव कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, इस संसार में मैं देख रहा हूं तापत्रेण अभिहतस्य घोरे, कि सभी जो इस भौतिक संसार में हैं वो तीन प्रकारों के तापों से त्रस्त हैं। और कौन से हैं तीन ताप, कोई जानता है? हम सब त्रस्त हैं, केवल नाम जानना बाकी है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो उद्धव कहते हैं कि सभी ये तीनों तापों से त्रस्त हैं और स्थिति ऐसी है कि मानो इनके ऊपर जलते हुए आग के शोले, इसकी बरसात हो रही इनके ऊपर। सोचिए जब बरसात होती है, जोर से यहां पर बरसात होती है तो थोड़ा तकलीफ होती है हमें, परंतु वो बरसात तो पानी की है। सोचिए ऐसी जगह पर जहां पर आग के शोलों की बरसात हो रही है तो क्या हालत होगी। तो उद्धव कहते हैं ये संसार में यही मैं देख रहा हूं कि जो तीन ताप हैं ये आग के शोलों की बरसात के समान हैं। तो जब बरसात होती है तो हम बरसात से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? छाते का। तो यहां पर उद्धव कहते हैं कि कौन सा ऐसा छाता होगा जो व्यक्ति को आग के शोलों के बरसात से बचाएगा, कौन सा ऐसा छाता है? तो कहते हैं द्वंदा आतपत्रात्। आतपत्र कहते हैं छाते को। और उद्धव कह रहे हैं द्वंद्व आतपत्रात्, ये जो दो चरण हैं भगवान आपके, ये है वो छाता जो कि संसार में इस बरसात से व्यक्ति को बचाएंगे। अब देखिए और भी इसमें आगे वो विश्लेषण कर बता रहे हैं इस छाते का, उनके चरण कमलों का, कि यदि इस प्रकार की वर्षा हो रही है, यदि आपके पास छाता भी है तो क्यों के ऊपर से इतनी आग गिर रही छाते के ऊपर, तो अंदर से छाते को गर्म कर देगी। जैसे कई बार हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी यदि धूप में खड़ी है एक घंटे से, तो हालांकि अंदर एसी भी हो, परंतु क्योंकि गाड़ी धूप में खड़ी थी एक घंटे से तो वो गर्म हवा ही फेंकेगी। तो फिर ये प्रश्न पूछा गया कि यदि छाता भी दे दिया जाए इस व्यक्ति को इस बरसात से बचने के लिए, तो इतनी आग ऊपर से गिर रही तो छाते को गर्म कर अंदर से गर्माहट देगी। तो यहां पर उद्धव कहते हैं कि ये जो छाता है आपके दोनों चरण कमलों का, ये बहुत ही विशेष छाता है, ये ऊपर से आग के शोलों से आपको बचाएगा परंतु अंदर से अमृत वर्षा, ये ऐसा छाता है जिसके अंदर से अमृत की वर्षा होती है। ऐसा छाता देखा है कि बाहर से आग से बचाए और अंदर से अमृत की वर्षा करे। तो यहां पर उद्धव भगवान से कह रहे हैं कि आपके जो दो चरण कमल हैं वो आतपत्र, वो उस प्रकार के छाते के समान हैं। महाराज कुलशेखर एक सुंदर अपने श्लोक में वो गुणगान कर रहे हैं भगवान के चरण कमलों का। वो उदाहरण देते हैं कि ये जो भवसागर है, इस भवसागर को यदि पार करना है तो आपको जहाज की आवश्यकता है। जैसे एक सागर को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है, तो जो भगवान का रूप है उसकी तुलना उस जहाज से कर रहे हैं। और इस जहाज में एक ध्वज स्तंभ है, तो उस ध्वज स्तंभ की तुलना वो भगवान के चरण कमल से कर रहे हैं महाराज कुलशेखर। और जीवात्मा की तुलना कर रहे हैं एक पक्षी से जो इस ध्वज स्तंभ पर बैठा है। तो जो जीवात्मा है जब वो ध्वज स्तंभ पर बैठता है तो जहाज और वो ध्वज स्तंभ उस पक्षी को पार करा देगा इस भवसागर, इस सागर को। परंतु कई बार क्या देखा जाता है कि पक्षी ध्वज स्तंभ पर बैठे बैठे उड़ता है, उड़कर थोड़ा घूमने का प्रयास करता है इस भवसागर में, परंतु भवसागर में कोई जगह नहीं इस पक्षी को जहां पर ये घूमकर कहीं पर आराम करे। एक ही है जगह, चाहे कितना भी ये घूमे इस सागर के ऊपर, परंतु थककर कहां पर वापस आएगा, ये उस जहाज के ध्वज स्तंभ के ऊपर, वही एकमात्र स्थान है इसके विश्राम का। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा जिसकी तुलना इस पक्षी से की गई है, कई बार वो भगवान के चरण कमल छोड़कर थोड़ा भ्रमित हो जाता है, भ्रमण करने जाता है इस भवसागर का, परंतु थक हार कर फिर से उसे उसी ध्वज स्तंभ का सहारा लेना पड़ता है। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं कि आप उस जहाज के समान हैं, आपके चरण कमल उस ध्वज स्तंभ के समान हैं, परंतु मैं वो पक्षी हूं जो विचरण कर रहा है इस भवसागर में, तो कृपया करके आप फिर से उस ध्वज स्तंभ पर बुला लीजिए मुझे, क्यों मैं जान गया हूं कि वही एकमात्र मेरा सहारा है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब वो कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे थे और अपने चरण कमल, कोई जूता नहीं पहना था भगवान ने, ऐसा नहीं कि नृत्य करने के लिए कोई जूता उता पहनकर नृत्य कर रहे थे, हालांकि वृंदावन में तो भगवान जूते पहनते ही नहीं थे। तो नंगे पैर भगवान कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तो सारे ब्रजवासी जब उन्होंने देखा कि अरे हमारा छोटा सा कान्हा कालिया के फनों के ऊपर, कभी भी एक कालिया जो इतना जहरीला कि कालिया का विष, जैसे ही उसकी विष की धुआं ऊपर उड़ती तो ऊपर उड़ता हुआ पक्षी वो मरकर नीचे गिर जाता, इतना जहरीला विष था कालिया का। और इस कालिया के ऊपर ये छोटा सा हमारा कृष्ण नृत्य कर रहा है, तो सभी वहां पर व्याकुल होकर बेहोश हो गए एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो थे बलराम जी। तो बलराम जी कृष्ण को कालिया के ऊपर नृत्य करता देख हंस रहे थे, बेहोश होना तो दूर की बात है, बलराम जी हंस रहे थे। और वो क्यों हंस रहे थे, कि बलराम जी सोच रहे थे कि आपकी लीला अपरंपार है, मैं इतने सृष्टि के शुरुआत से अनंत शेष के रूप में, वो भी एक सर्प है, उस सर्प के रूप में मैं आपको उठाए हुए हूं, आपने कभी मेरे ऊपर नृत्य नहीं किया, ये कालिया ने ऐसा कौन सा इसके अंदर गुण है, कौन सा पुण्य इसने किया है, एक जहरीला सर्प और इसके ऊपर आप ऐसी कृपा बरसा रहे हो कि नृत्य कर रहे हो, उतरोगे तो मैं कहूंगा अभी मेरे ऊपर भी ऐसे ही नृत्य करना अनंत शेष के रूप में जब मैं होता हूं। तो बलराम जी मुस्कुरा रहे थे इसे देखकर। और जो नाग पत्नी, एक कालिया की पत्नियां, वो थोड़ी सी ईर्ष्या कर रही थी और सोच रही थी कि हम इतनी आपकी आराधना किए हैं और इस कालिया इसने क्या किया, परंतु आप इसके फनों के ऊपर अपने चरण कमल रखे हुए और रखे हुए केवल नहीं बल्कि नृत्य कर रहे हैं, जोर जोर से अपने चरण कमल मार रहे हैं, इसके ऊपर शुद्ध कर रहे हैं, कालिया को शुद्ध कर रहे थे भगवान। तो या तो आपसे बड़ा कृपालु व्यक्ति और कोई नहीं है, या तो इस कालिया ने पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए सभी अवतारों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो बहुत कृपालु है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। और वो क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से जिस मुद्रा में खड़े हैं वो बहुत कृपा की मुद्रा है। जैसे यहां पर सामने देखिए, भगवान श्री गोपीनाथ त्रिभंग स्वरूप में खड़े हैं और उनका जो दाहिना पैर है वो अपने तलवे को बाहर निकाले हुए है। पैरों का जो तलवा होता है, इस मुद्रा में जब व्यक्ति खड़ा होता है तो तलवे बाहर निकालकर खड़ा होना होता है। तो आचार्य बताते हैं कि ये ऐसे क्यों खड़े हैं, तलवे को बाहर क्यों निकाले हैं? वो इसलिए निकाले हैं कि जब हम सामने जाकर दर्शन करते हैं इनका तो पीछे से जो हवा बहती है, उनके चरण कमलों के पीछे से जो हवा बहती है वो उनके चरण कमल की रेणुओं को लेकर हमारे माथे को लगती है। परंतु यदि वो नारायण की तरह सीधे खड़े रहें तो वो कहां से हवा चरण रेणु को निकालकर हमारे माथे पर रखेगी? तो भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त इतने जन्म जन्मांतर भ्रमण कर आया अब मेरे सामने, तो तुरंत भगवान अपना तलवा सामने कर देते हैं और हवा का झोंका वो चरण रेणु लेकर उस बद्ध जीवात्मा के माथे पर जब फेंकता है तो उसका उद्धार होता है। परंतु वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने अपनी कृपा कृष्ण से भी अधिक मात्रा में बरसाई कि यहां पर तो एक पैर नीचे है भगवान का, परंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर कर खोल दिए कूदते हुए, और उन्होंने क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के रूप में केवल एक पैर का तलवे के चरण रेणु दे रहा था, अब दोनों पैर के लो, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है इस कलयुग में। इसीलिए नमो महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु वो सभी अवतारों के अवतारी हैं। और भागवत में वर्णन है भगवान के चरण कमलों का गुणगान करते हुए मार्कंडेय ऋषि उन्होंने भगवान जब प्रलय करते हैं तो किस प्रकार से होता वो देखना चाहा, तो कथा है भागवत में। तो भगवान उसमें मार्कंडेय ऋषि को ऐसा दर्शन देते हैं वटपत्र के ऊपर, भगवान बाल गोपाल के रूप में क्या कर रहे हैं, अपने अंगूठों को चूस रहे हैं, पैर के अंगूठे को। और भगवान का प्रयोजन यही था कि भगवान सोच रहे थे कि ये सब भक्त मेरे चरण के पीछे पागल क्यों हैं, तो चलो चखा जाए क्या है इसके इतना अंदर कि सारे भक्त मेरे चरणों के पीछे पागल हैं। तो भगवान ने सोचा यदि मैं अपने बड़े स्वरूप में करूंगा ये द्वारकाधीश के रूप में अपने चरण को पकड़कर अंदर मुंह में ले रहा हूं तो लोग कहेंगे भाई ये द्वारकाधीश हैं क्या है। तो इसलिए छोटे बालक जो होते हैं उनको आदत होती है और वो कर भी सकते हैं वो आसन, तो अपने ही अंगूठे को पैर के अंगूठे को मुंह में लेना छोटे बच्चे करते हैं। तो भगवान बाल गोपाल रूप में अपने ही चरणों का आस्वादन कर देख रहे थे कि क्या है इसके अंदर इतना, और क्योंकि उन्हें वो आस्वादन नहीं मिल पाया तो वो कहे कि मुझे इस ये चरणों का आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप लेना होगा। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आए और गंगा देवी जिनको विष्णुपादी भी कहा गया है, देखिए संसार में जो सबको पावन कर रही हैं गंगा, वो भगवान के चरण कमल से निकली है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरण कमलों का गुणगान करते हुए उन्होंने गाया है, एखन भजिनो प्रभु तोमार चरण अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखण, कि आपके चरण कमल जो हैं एकमात्र जो अशोक देने वाले हैं व्यक्ति को, शोक से मुक्त करने वाले, अमृत प्रदान करने वाले आपके चरण कमल हैं। तो यही शिक्षा हमें मिल रही है अहिल्या के उद्धार से कि अहिल्या इतने हजारों वर्ष प्रतीक्षा कर रही थी कब भगवान के जो चरण हैं वो मेरे ऊपर लगेंगे और मेरा उद्धार होगा। तो आगे अब भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं और जनक महाराज से भेंट होती है और जनक महाराज से भेंट होने के पश्चात फिर जब शिव धनुष को तोड़ते हैं, जो धनुष भंजन होता है उसके पश्चात राम और सीता का विवाह होता है, उससे संपन्न हुआ है अब ये बालकांड। तो सीता विवाह की चर्चा हम सोच रहे हैं, हम आपसे अनुमति लेना चाहते हैं कि क्या हम कल सुबह करें या शाम को। हाँ, परंतु यदि हम शाम को करेंगे तो फिर हम सुंदरकांड शुरू नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है हनुमान जयंती से पहले, और सुंदरकांड तो बहुत सुंदर है और उसे सुनाने के लिए कम से कम 2 लेक्चर तो लगेगा। सुंदरकांड पूरा नहीं, केवल हनुमान जी प्रारंभ जो किए हैं अपनी यात्रा लंका के लिए, तो हम सोच रहे थे उसे शाम को शुरू करें और सुबह ये जो अंतिम प्रसंग है इसे पूरा करें। तो यदि आप लोग सब कल सुबह आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं कल सुबह, और बाकी लोग नहीं आ सकते, अच्छा हाथ नीचे कीजिए, और कितने लोग नहीं आ सकते, परंतु कल छुट्टी है मुझे किसी ने कहा, हाँ महावीर जयंती की छुट्टी नहीं होती, अच्छा तो छुट्टी कर सकते हैं। हाँ, संडे को सुबह कितने लोग आ सकते हैं, उतने लोग हैं। और संडे को कितने लोग नहीं आ सकते सुबह, तो संडे सुबह शुरू करना चाहिए। हाँ, अच्छा हाथ उठाइए, कितने लोग चाहते हैं संडे सुबह हम सुंदरकांड शुरू करें। ठीक है, तो फिर कल सुबह हम सीता विवाह की कथा लेंगे और कल शाम को सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की।
कुछ वो फैमिली आता है।